नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ गिरीश बुमना। गिरीश जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत।
आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। सूरज कुमार चंद ने पीएसए चैलेंजर टूर स्क्वैश इवेंट का खिताब जीता। हॉकी इंडिया ने पुरुष नेशनल कोचिंग कैंप के लिए 36 खिलाड़ियों की घोषणा की। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप कल से मिस्र के काहिरा में शुरू। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। चर्चा की शुरुआत करते स्क्वैश से। भारत के सूरज कुमार चंद ने पीएसए चैलेंजर टूर स्क्वैश इवेंट का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में सूरज ने आज साउथ कोरिया के जियोंगमिन रोयो को सीधे गेम में हराया। पेश है एक रिपोर्ट।
दूसरी वरीयता प्राप्त सूरज ने फाइनल में आठवीं वरीयता प्राप्त प्रतिद्वंदी को 11-5, 11-9, 11-3 से मात देकर चौथा पीएसए टूर खिताब जीता। सूरज ने दबदबा बनाते हुए पांचवीं बार फाइनल में जगह बनाई थी। प्रतियोगिता में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी सूरज ही थे जिन्होंने शुरुआती दौर से ही अपना दबदबा बनाए रखा। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने हमवतन ओम सेमवाल को सीधे गेम में हराकर आसानी से अगले दौर में जगह बनाई। सेमीफाइनल में हांगकांग के वाईलोक टो को 11-8, 11-7, 11-6 से शिकस्त देकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। महिलाओं के वर्ग में मिस्र की रुकाया ओथमान ने मलेशिया की हार्लिन टैन को एक रोमांचक फाइनल मुकाबले में 12-10, 11-7, 9-11, 11-7 से हराकर खिताब अपने नाम की। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
सौरव घोषाल हो या फिर जोशना चिनप्पा और बहुत सारे अनाहत सिंह, बहुत सारी ऐसी नई पौध भी है और सौरव घोषाल तो 2004 से ही अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं।
एक नाम अभय सिंह का,
अभय सिंह जी
उनका लेना बहुत जरूरी है
जी।
तो खैर बात करते हैं सूरज चंद का जो टूर्नामेंट का सफर रहा, आपने रिपोर्ट में ही बताया उन्होंने एक भी गेम जो है सारे स्टेट सेट्स में जीते। तो आप अब ये कह सकते हैं कि उनकी विशेषताएं जो है इस मैच का अगर एनालिसिस करें तो काफी डोमिनेटिंग गेम प्ले रहा उनका और सूरज ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी गेम नहीं हारा जैसा कि मैंने बताया और जो काफी वो बेहतरीन फॉर्म में दिखे और काफी कंट्रोल और प्रिसीजन के साथ खेले। जो कोर्ट में जो पूरा दबदबा उठाया, जो फायदा उठाया, उनके जो शॉट्स की एक्यूरेसी थी प्रशांत, वो अपने ओपोनेंट्स को रिकवरी करने का मौका नहीं देते। तो वो एक हमने देखा कि कम से कम इस खिलाड़ी में, जैसे आपने बताया कि इकलौते भारतीय खिलाड़ी चार सेमीफाइनलिस्ट में जिन्होंने फाइनल ये जीता। खैर भारत के और भी जो खिलाड़ी इसमें थे उसमें ओम सोमवाल, राहुल बैठा, अभिषेक अग्रवाल, संदीप जांगड़ा, वेदांत मदने, ये सब खिलाड़ी थे जो आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन सूरज ने काफी अच्छा कमाल दिखाया। यहाँ पर क्वार्टर फाइनल में उन्होंने हमवतन ओम सेमवाल को ही हराया 11-8, 11-1, 11-4। ये स्कोर बताना इसलिए भी जरूरी है कि आप ये देखें स्कोर 11-8, 11-1, 11-4, फिर उसके सेमीफाइनल में हांगकांग के वैक्टो को 11-8, 11-7, 11-6 और फिर फाइनल में जो उन्होंने प्रदर्शन किया। यहां भी जो इनका स्कोर था वो एक मतलब ऐसा नहीं रहा कि कोई कड़ी प्रतिद्वंदिता इनको दूसरे छोर से मिली, तो इसका मतलब है कि काफी इन्होंने गेम में पकड़ बनाई रखी। हर एक गेम में इनकी जो है जो लय था वो एक विनिंग खिलाड़ी के रूप में देखने को मिला हमें।
जी, लय को इन्होंने बरकरार रखा और जो इनकी रैंकिंग है 134वीं रैंकिंग है इनकी, उसमें भी सुधार होगा। क्या हम कहें कि भारत का जो प्रदर्शन है स्पेशली स्क्वैश में, इस तरह के जब खिलाड़ी उभर के आते हैं तो इंटरनेशनली जो है एक महाशक्ति के रूप में भारत उभर रही है।
खैर अभी महाशक्ति तो नहीं कह सकते क्योंकि जब यूरोपियन खिलाड़ी के साथ हमारा जब आमना सामना होगा तब देखा जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि रैंकिंग पे अगर बात करें तो जैसे चैलेंजर टूर्नामेंट टाइटल जीतने के बाद लगभग 100 से 200 पॉइंट्स का इनको इजाफा होता है इनके पॉइंट्स में, तो अगर अभी 134 से 140 के बीच में है तो आप ये मान सकते हैं कि टॉप 100 के अंदर आ जाए, लेकिन टॉप 100 से टॉप 50 आने के लिए उनको यूरोपियन खिलाड़ियों को हराना पड़ेगा। इतना आसान नहीं होगा ये सफर
जी। बात कर लेते हैं हॉकी पर। हॉकी इंडिया ने आज सीनियर पुरुष नेशनल कोचिंग कैंप के लिए 36 सदस्यों वाले संभावित खिलाड़ियों के मुख्य समूह की घोषणा कर दी है। ये कैंप 20 अप्रैल से 9 मई तक बेंगलुरु में भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में एफआईएच प्रो लीग 2025-26 का यूरोपीय चरण, विश्व कप और एशियाई खेल शामिल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंप है क्योंकि इस कैंप में तालमेल को भी देखा जाएगा, उनकी रणनीति होगी, आने वाले मुकाबलों में टीम कॉम्बिनेशन को लेकर के चर्चा की जाएगी।
बिल्कुल, और इस साल और पिछले कुछ महीनों में भारतीय टीम का प्रदर्शन काफी फीका रहा है, चाहे वो प्रो लीग बात करें, चाहे भारत में हुई, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हुई, तो हमने बहुत ही मतलब फीका प्रदर्शन किया। अर्जेंटीना से 8-0 से हार गए, जो एक बहुत बड़ा मतलब अगर बैक टू बैक दो ओलंपिक जो एक कांस्य पदक जीतने के बाद हमारा प्रदर्शन नीचे गया। लेकिन अभी जो हॉकी इंडिया लीग हुई है उसमें जो खिलाड़ी, जो कुछ यंग खिलाड़ी जो आप देखेंगे इस लिस्ट में, जिनका नाम जो है प्रिंसदीप सिंह है, तमिलनाडु ड्रैगन से खेला उन्होंने, तलीम प्रियबता जो है हॉकी इंडिया लीग की जो गवर्निंग काउंसिल की जो टीम थी वहां से उन्होंने खेला, फिर उसके अलावा जो नाम सभी जी जानते हैं, किशन बहादुर पाठक हो कलिंगा लांसर से, फिर यशदीप स्वच्छ हो रांची रॉयल से, और नीलकंठ शर्मा हो हैदराबाद तूफान से, इन सब का प्रदर्शन अच्छा रहा है। लेकिन एक नाम जो इस लिस्ट में है वो अभी भी है, वो है मंत्रप्रीत सिंह का, जो हमारे पूर्व कप्तान रहे और वन ऑफ द लीडिंग इंटरनेशनल कैप्स के साथ। तो मैं, मुझे ये देखना है कि वो अपनी जो ये 36 की जो संभावित सूची है आने वाले एशियन गेम्स, विश्व कप और इन सबको ध्यान में रखते हुए ये अब टीम बनाई जाएगी, तो कम से कम वहां पर प्रदर्शन जो है इनका वो टीम में अगर आ पाते हैं मनप्रीत, और बाकी तो जब जो टॉप प्लेयर्स हैं वो तो परफॉर्म कर ही रहे हैं जो टीम के लिए, लेकिन मनप्रीत का होना क्योंकि यहां पर एक्सपीरियंस काफी मायने रखेगा इन टूर्नामेंट्स के लिए।
जी, वहीं हॉकी इंडिया ने आज अंडर 18 नेशनल कोचिंग कैंप के लिए 84 खिलाड़ियों की भी घोषणा कर दी है, इनमें 42 पुरुष और 42 महिला शामिल है। जी
बिल्कुल, जूनियर टीम्स की जो कमान है वो पूर्व कप्तान सरदार सिंह संभाल रहे हैं, और सरदार काफी असरदार है, तो मुझे लगता है कि जो एक बेंच स्ट्रेंथ है यहीं से खिलाड़ी अब सीनियर टीम को मिलेंगे, तो इस लिहाज से भी ये बहुत जरूरी है।
बहुत जरूरी, और हाल ही में जो सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप हुआ था उसमें भी बहुत ही उभरते खिलाड़ी नजर आए थे और वो इस कैंप का हिस्सा भी है।
बिल्कुल, कुछ खिलाड़ी इसमें से आएंगे, तभी तो हमें वो अंडर 19 की जो विश्व कप होती है वहां पर ये खिलाड़ी वहां आपको खेलते हुए दिखेंगे।
जी, बात कर लेते हैं निशानेबाजी पर। ISSF जूनियर विश्व कप कल से मिस्र के काहिरा में आयोजित की जाएगी। इस सत्र में भारतीय जूनियर निशानेबाज अलग अलग स्पर्धाओं में भाग लेंगे। प्रतियोगिता के पहले दिन महिला 10 मीटर एयर राइफल और पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धाएं होंगी। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
निशानेबाजी विश्व कप में भारत के 71 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनमें 58 निशानेबाज और 13 सहयोगी स्टाफ शामिल हैं। प्रतियोगिता के पहले दिन की शुरुआत पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए 25 मीटर पिस्टल प्रेसिजन चरण के साथ होगी। भारत ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 6 निशानेबाजों को उतारा है, जिनमें एशियाई जूनियर रिकॉर्ड धारक और 2025 की विश्व कप चैंपियन शंभावी क्षीरसागर के प्रदर्शन पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। अनुष्का ठोक, मान्यता सिंह, अनीशा शर्मा, अनवी राठौर और पना भोगरा भी अपनी चुनौती पेश करेंगी। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भी भारत के 6 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिनमें पूर्व जूनियर विश्व चैंपियन और मिक्स्ड स्पर्धा में 2023 विश्व चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता शिव नरवाल भी शामिल है। डेफलिम्पिक्स 2025 के चैंपियन अभिनव देशवाल, अभिनव चौधरी, अभय धामा, हिमांशु राणा और 17 वर्षीय चिराग शर्मा प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। स्कीट स्पर्धा में भारत के पुरुष वर्ग में 5 और महिला वर्ग में 4 निशानेबाज भाग लेंगे। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
बात कर लेते हैं टेबल टेनिस पर। जूनियर और युवा राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र, पीएसपीवी दिल्ली, एनसीओई और हरियाणा ने एक राउंड शेष रहते ही प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। बात कर लेते हैं फुटबॉल पर। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज पंजाब एफसी और इंटर काशी के बीच मुकाबला जारी है। हाफ टाइम तक पंजाब एफसी ने 1-0 की बढ़त बना ली है। अंक तालिका में पंजाब एफसी 7वें और इंटर काशी 8वें स्थान पर है। करीबी मुकाबला भी चल रहा है और पोजीशन अगर हम रैंकिंग देखें तो आसपास की है, सातवें और आठवें।
देखिए पंजाब की टीम ने जो है बड़ी टीम को परेशान किया है, कंसिस्टेंट टीम है, 8 मैच में 3 जीत 2 ड्रॉ 11 पॉइंट्स हैं और उसके बाद पिछला जो मैच था जो वो बहुत ही एक कड़े मुकाबले में मोहन बगान सुपर जायंट से वो 2-3 से हार गए, तो इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि उनकी जो अटैकिंग लाइन जो है काफी फास्ट है और काउंटर अटैक पर वो खतरनाक है। लेकिन दूसरी तरफ इंटरकाशी जो उन्होंने पिछला मैच चेन्नई एफसी को 2-1 से हराया था और सबको चौंका दिया, तो इस लिहाज से अभी भी जो मैच जारी है उसमें एक गोल आया है प्रशांत और
वो 2-0 की बढ़त हो गई है।
अब से 2-0 की बढ़त हो गई है बिल्कुल, और दोनों गोल पंजाब के तरफ से आए और एक पहला जजलोकोविच ने किया है और दूसरा एफिलोंग ने किया है, तो इस लिहाज से इंटर काशी अब यहां से पिछड़ते हुए, हालांकि फुटबॉल का गेम है और दूसरे हाफ में कभी भी मुकाबला जो है वापसी का हो सकता है, लेकिन पंजाब की जो टीम है वो अभी तक पकड़ बनाए हुए इस मैच में।
जी वहीं कल हुए मुकाबले में मोहन बगान ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को 1-0 से हराया। बात कर लेते हैं क्रिकेट पर। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 15वें ओवर में 4 विकेट पर 113 रन बना लिए हैं। टॉस जीतकर गुजरात ने गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में गुजरात 6ठे और मुंबई 10वें स्थान पर है। पंजाब पहले और बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है। वहीं कल हुए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 54 रन से हराया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब की शुरुआत अच्छी नहीं रही। प्रभसिमरन सिंह बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। हालांकि इसके बाद प्रियांश आर्या और कूपर कोनोली ने दूसरे विकेट के लिए 80 गेंद में ताबड़तोड़ 182 रन की साझेदारी निभाई। कोनोली ने 8 चौके और 7 छक्कों की मदद से 87, वहीं प्रियांश ने आतिशी अंदाज में खेलते हुए सिर्फ 37 गेंद में 93 रन की शानदार पारी खेली। मार्कस स्टोइनिस ने भी 29 रन का अहम योगदान दिया। पंजाब ने निर्धारित ओवर में 7 विकेट पर 254 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। लखनऊ के लिए प्रिंस यादव ने सिर्फ 25 रन देकर 2 विकेट चटकाए। 255 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत शानदार रही। आयुष बडोनी और मिचेल मार्श ने पहले विकेट के लिए 61 रन जोड़े। मार्श ने 40, वहीं बडोनी ने 35 रन की अहम पारी खेली। कप्तान ऋषभ पंत अच्छी लय में दिखाई दिए और उन्होंने महज 23 गेंद पर 43 रनों की दमदार पारी खेली। निकोलस पूरन की खराब फॉर्म इस मुकाबले में भी जारी रही और वे 9 रन ही बना सके। एडन मार्करम और मुकेश चौधरी ने 5वें विकेट के लिए 60 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी निभाई। हालांकि लखनऊ की टीम निर्धारित ओवर में 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में उन्हें एक और मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के साथ ही पंजाब शीर्ष पर बनी हुई है, वहीं लखनऊ 8वें स्थान पर पहुंच गई है। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
मुंबई और गुजरात के मुकाबले की अगर हम बात करें तो एक समय था जब मुंबई ने 44 पे 3 विकेट अपने गंवा दिए, लेकिन इसके बाद नमन धीर और तिलक वर्मा ने अच्छी वापसी कराई है मुंबई की।
वापसी नमन धीर भी आउट होकर चले गए, तो अभी फिलहाल जैसा कि स्कोर 120-4 है, लेकिन आज 2 बदलाव किए गए, 2 जो है डेब्यूटेंट मुंबई इंडियंस ने खिलाए हैं, तो रोहित शर्मा इसका मतलब है कि पूरी तरह से फिट नहीं है। इस वजह से क्रिस भगत जो गेंदबाजी संभालेंगे और वही दानिश मालेवार जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया था और उस लिहाज से इनको एज अ ओपन बैटर के तौर पे आज मुंबई ने शामिल किया क्विंटन डिकॉफ के साथ। हालांकि वो 2 रन ही बना सके। रबाडा ने एक के बाद एक 3 जो है विकेट चटकाए वहां पर और उस लिहाज से जो पावर प्ले में जो एक बड़ा स्कोर जो खड़ा करती आई है टीम, सब तक जितनी भी टीम जीती है उसका एक लक्ष्य होता है कि पावर प्ले पे बड़ा स्कोर खड़ा करे, तभी वो सफलता प्राप्त कर सकती है। यहां मुंबई इंडियंस वैसे भी अहमदाबाद में उनका रिकॉर्ड 0-4 का है जीटी के खिलाफ और अभी हार्दिक पांड्या पे काफी दबाव होगा, कप्तानी का दबाव भी है ही, साथ साथ बतौर बैटर भी दबाव है। लेकिन एक बात तारीफ करनी होगी मुंबई इंडियंस की कि उनके जो स्काउट्स हैं वो काफी मौका देते हैं जसप्रीत बुमराह हो, हार्दिक पांड्या हो और अब नए खिलाड़ियों को, तो उम्मीद करते हैं कि आज का मैच दानिश के लिए अच्छा ना हो लेकिन आने वाले समय में वो हो सकता है कि बड़ा नाम बने।
जी वहीं अंडर 19 मूक बधिर क्रिकेट टूर्नामेंट आज से धनबाद में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में भारत और नेपाल के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। टूर्नामेंट के मुकाबले जीएल गोड़ा स्टेडियम में खेले जाएंगे, जबकि फाइनल 22 अप्रैल को रेलवे स्टेडियम में होगा। और चलते चलते श्रोताओं बता दें कि मुंबई इंडियंस ने 15वें ओवर में 4 विकेट पर 121 रन बना लिए हैं। और श्रोताओं अब समय हो चला है विदा लेने का। गिरीश जी आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रशांत।
और श्रोताओं इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।